नमस्कार भारत, आज है 9 फरवरी दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फलस्तीनी क्षेत्र के लिए होंगे रवाना। फलस्तीनी क्षेत्र में जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे।
इसराइल के साथ हमारा रिश्ता है ट्रांजैक्शनल, पैलेस्टाइन के साथ अलग है। जो उनके ख्वाहिशात हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं।
हैदराबाद में आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 दिन की प्लेनरी, 3 तलाक एजेंडे में प्रमुख। यूपी में योगी आदित्यनाथ के 10 महीने के कार्यकाल में करीब 1200 एनकाउंटर हुए। सुनिएगा एक रिपोर्ट झारखंड में काला नमक नाम के चावल की खेती पर।
बीज जो है उसको अच्छा से पहले साफ कर लेते हैं घर में, शोधित करने के बाद शोधित जो हम लोग करते हैं वो भी हम लोग नेचुरल तरीके से करते हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। मोदी फलस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान मोदी भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा और चरमपंथ के खिलाफ सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सांसद सैकड़ों अरब डॉलर के बजट बिल को पारित करने के लिए वोटिंग की तैयारी में हैं। कुछ सांसद 2 साल के लिए इस बजट प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। बजट प्रस्ताव पर पहले सीनेट में वोटिंग होगी और इसके बाद प्रतिनिधि सभा को इसे पास करना है। हालांकि बुधवार को हुई बैठक में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों के बीच इस गतिरोध को दूर करने पर बात हुई थी और वो इस खर्च पर सहमति देने के लिए राजी हो गए थे। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अमरीकी संसद इस बिल को मध्यरात्रि तक पारित कर पाएगी या नहीं। मौजूदा बजट की अवधि गुरुवार की मध्यरात्रि को खत्म हो रही है और अगर बिल पारित न हुआ तो अमेरिका में फिर से आंशिक कामबंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। अमरीकी शेयर बाजारों में गुरुवार को एक बार फिर तेज गिरावट आई और डाउ जोन्स हफ्ते में दूसरी बार 1000 अंकों से अधिक टूट गया। शेयर बाजारों में बिकवाली हावी रही और डाउ जोन्स 4% से अधिक टूट गया। S&P इंडेक्स में 0.25% और नैस्डेक में 275 अंकों की गिरावट आई। गिरावट की वजह दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का बढ़ना और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी को माना जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता राज शाह ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक सफलता को लंबी अवधि में परखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा,
The president, like the rest of the White House, is concerned about long-term economic
व्हाइट हाउस के दूसरे लोगों की तरह राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को लेकर है और लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल बेहद मजबूत हैं। बेरोजगारी की दर 4.1% पर है और कंपनियों की आमदनी बहुत अच्छी है और हम समझते हैं कि लंबी अवधि के ये फंडामेंटल स्वस्थ अर्थव्यवस्था को दिखाते हैं। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता राज शाह के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया ने अमेरिकी गठबंधन सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। सीरिया के पूर्व हिस्से में गठबंधन सेना के हवाई हमलों में 100 से अधिक सरकार समर्थित लड़ाकों के मारे जाने की खबरों के बाद सीरिया ने ये आरोप लगाया है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने आत्मरक्षा में हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल रायन डिलन ने बीबीसी से कहा,
हमारी सहयोगी सेना सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस ने गठबंधन की मदद से आत्मरक्षा में ये हमले किए। पूर्वी सीरिया में बगैर उकसावे के दुश्मन सेनाओं ने हम पर हमले किए। उन्होंने टैंक, मोर्टार और तोपों से हमारी सहयोगी सेनाओं को निशाना बनाया। ये थे अमरीकी सेना के प्रवक्ता रॉयन डिलन के शब्द। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 कथित ब्रितानी सदस्यों को सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों ने पकड़ा है। पकड़े गए कथित ब्रितानी नागरिकों के नाम अलेक्जेंडर कोटे और अल शफी अल शेख हैं। ये कथित इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे 4 सदस्यीय गैंग के सदस्य थे और लंदन के रहने वाले थे। उन्होंने इस गैंग का नाम बीटल्स रखा था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन की यात्रा पर फलस्तीनी क्षेत्र, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। फलस्तीनी क्षेत्र में जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। ये सभी जानते हैं कि राजधानी और क्षेत्र संबंधी विवाद को लेकर इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्र के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, जो समय समय पर हिंसक रुख भी अख्तियार कर लेता है। पिछले महीने इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे और पिछले साल जुलाई में नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की फलस्तीनी क्षेत्र की यात्रा को इसराइल और फलस्तीनी क्षेत्र के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। वहां राष्ट्रपति महमूद अब्बास की सरकार के साथ कई समझौतों पर दस्तखत की संभावना भी जताई जा रही है। सुनिए मानसी दास की रिपोर्ट।
बीते महीने इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाने की उनकी और उनकी पत्नी की तस्वीरें हमारे जहन में अभी भी ताजा हैं। आज से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान उनका पहला पड़ाव होगा फिलिस्तीन, जिसके साथ इसराइल का दशकों पुराना झगड़ा है। फिलिस्तीन में मोदी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की याद में बने म्यूजियम में भी जाएंगे। यरूशलेम को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी गतिरोध में उनकी इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत के पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव रह चुके चिन्मय गरे खान कहते हैं,
वहाँ से हमारे एनर्जी सप्लाईज, ऑयल, गैस इतने सारे आते हैं, 60-70% कम्स फ्रॉम देयर। हमारे इतने लोग हिंदुस्तानी लोग वहाँ बसे हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज में देश भेज रहे हैं। और फिलिस्तीन और इसराइल के रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी देखना पड़ेगा कि जब वो रामल्ला जाएंगे तो वहाँ कोई जॉइंट डिक्लेरेशन निकलेगा कि नहीं।
हाल में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी मानने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र में यरूशलम को लेकर वोटिंग हुई तो भारत ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में वोट दिया था। इससे पहले जुलाई 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इसराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की वोटिंग से खुद को अलग रखा था। हालांकि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के बीच मोदी की इस यात्रा पर मध्य पूर्व में भारतीय राजदूत रहे तलमीज अहमद कहते हैं कि मौजूदा विदेश नीति के अनुसार भारत दोनों के साथ अलग अलग लेकिन स्वतंत्र रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं
कि जब प्रधानमंत्री जी इसराइल गए थे पिछले साल, तो वहाँ हमको समझाया गया था कि हमारा रिश्ता इसराइल और पैलेस्टीन के साथ अब बिल्कुल डीहाइफनेटेड हो जाएगा, यानी कि हम उनके साथ अप्रोच अलग अलग करेंगे। तो जब वो इसराइल गए तो पैलेस्टाइन नहीं गए, लेकिन उसके जाने के पहले वहाँ के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास साहब यहाँ आए थे इंडिया। इसराइल के साथ हमारा रिश्ता है ट्रांजैक्शनल, उसमें डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है वगैरह। पैलेस्टाइन के साथ अलग है, जो उनके ख्वाहिशात हैं, उनके एस्पिरेशन है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है।
अपने विदेशी दौरों के लिए मोदी कई बार विपक्ष के निशाने पर आए हैं। विपक्ष आरोप लगा चुकी है कि कई देशों की यात्रा करने के बाद भारत में जिस तरह का विदेशी निवेश होने की उम्मीद थी वैसा हुआ नहीं। तलमीज अहमद कहते हैं
प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, वहाँ 12 एग्रीमेंट साइन होंगी, उसके बाद ओमान जाएंगे। ओमान में के साथ तो हमारे बहुत ही पुराना ताल्लुकात है और वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी भी है, उनके साथ हमारा खास रिश्ता रहा है।
मोदी के इस दौरे से जहाँ फिलिस्तीन खुश है, इस पर अब तक इसराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माना यह जा रहा है कि मोदी के इस दौरे में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन इसके बाद सीधे तौर पर भारत को कितना फायदा होगा और यरूशलम को लेकर आपस में उलझे दोनों इसराइल और फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध और कितने गहरे होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मानसी दास, BBC दिल्ली।
हैदराबाद में आज से 3 दिन तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्लेनरी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मॉडल निकाहनामे की बात की जाएगी और उसमें ट्रिपल तलाक संबंधी बिल में संशोधनों को लेकर चर्चा होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूदा स्वरूप में 3 तलाक संबंधी बिल का विरोध करता आया है। बोर्ड का कहना है कि सरकार हर हाल में बिल को पारित करने पर तुली हुई है। इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की अखबार मिल्ली गजट के संपादक जफरुल इस्लाम खान से।
देखिए, ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बोर्ड और बोर्ड के बाहर भी ये बात मुस्तकिल कही गई है कि ये जो दीन का मामला है, रिलीजन का मामला है, इसके अंदर सरकार को या कोर्ट्स को या पार्लियामेंट को दखल नहीं देना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं हम लोग खुद अपनी इसलाह कर लें, अपने रिफॉर्म खुद कर लें। कुछ चीज खराब है, हमको मानते हैं, सब लोग मानते हैं वो खराब चीज है। कानून लाने का मतलब क्या है कि वो कल और भी लाएंगे, फिर और भी लाएंगे, एक रास्ता खुल जाएगा, तो हम चाहते हैं रास्ता न खुले।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है, तो अब उसी को आगे ले जाने की ये कोशिश की तरह नहीं लग रहा आपको? तीन तलाक देने वाले को सजा तो ऐसे भी मिल रही है।
कानून आ जाएगा, लेकिन हम उसको एक जालिम कानून मानेंगे। कानून क्या हो, कानून तो बहुत से बने हैं। अंग्रेजों ने कितने कानून बनाए, हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट थी सब उनके नजदीक इलीगल थी, और सबके लिए उनके यहाँ सजाए कैद होती थी, और वो अंडमान निकोबार में जो है ना वो एक्साइल करते थे और हमको फांसी हफ्जब करते थे, तो वो लीगल नहीं था। वो एक इमोरल जो है ना एक्ट है। अगर ये भी कर देंगे तो हम उसको एक इमोरल एक्ट ही समझेंगे, और कम्युनिटी जो है और ज्यादा एहतियात करेगी कि ऐसा ना हो। ये तो बहरहाल एक कम्युनिटी के अंदर एक सोच ये आ गई है कि ये गलत है। ये
कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जब ऑलरेडी एक धारा चल चुकी है, कानून बनाने पर बात चल रही है, तो ऐसे में पर्सनल लॉ बोर्ड का सामने आना कुछ बैलेंसिंग एक्ट टाइप का है?
ये धारा बीजेपी की है, और बीजेपी के लीडर्स उन्होंने खुद कहा है कि हमने किसी भी मुस्लिम संगठन से बात ही नहीं किया। तो आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं, 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके बारे में एक कानून बन रहा है, लेकिन उनसे बात करने की जरूरत नहीं किया। ये डेमोक्रेसी है? ये तो डिक्टेटरशिप है। ये खुद बैठ करके फैसला कर लिया उन्होंने, इसलिए कि ये असल में उनकी वोट पॉलिटिक्स है। वो समझते हैं कि इस तरह से जो मुस्लिम वीमेन है वो इनको वोट देने रहेंगी।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहमियत को सरकार ने खत्म कर दिया?
नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस चीज को पब्लिक मानती है उसकी अहमियत अपनी जगह पर रहती है। जिस भी संगठन या जिस भी आइडिया को पब्लिक सपोर्ट होती है, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मोदी जी आज आए हैं, मोदी जी कल चले भी जाएंगे।
ये थे मिल्ली गजट अखबार के संपादक जफरुल इस्लाम खान। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार ने अभी एक साल का समय पूरा नहीं किया है, लेकिन इस दौरान राज्य में अपराधियों के साथ मुठभेड़ यानी एनकाउंटर के आंकड़े में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 महीने के कार्यकाल में अब तक करीब 1200 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें करीब 3 दर्जन कथित अपराधियों की मौत हो चुकी है और 4 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। लेकिन कई एनकाउंटर्स पर न सिर्फ मारे गए लोगों के परिजनों ने सवाल खड़े किए, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सरकार को नोटिस भेज दिया। वहीं दूसरी ओर एनकाउंटर्स की इतनी ज्यादा घटनाओं के बावजूद राज्य में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है इसकी वजह, सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
पुलिस वाले कोई भी मेरे भाई के खिलाफ कोई FIR दिखाएं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री दिखाएं, हमें उनसे यारी दोस्ती की क्या आवश्यकता है जी, जब मेरे भाई के खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है।
गत 3 फरवरी को नोएडा में एक प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी की गोली से घायल जितेंद्र यादव के भाई मीडिया में ये सफाई दे रहे थे। जितेंद्र यादव नोएडा में एक जिम चलाते हैं और उनके जानने वालों के मुताबिक उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और न ही उन्होंने कभी कोई आपराधिक कृत्य किया था कि पुलिस उन पर हाथ डाले। मामले को तूल पकड़ता देख नोएडा के SSP लव कुमार को सफाई भी देनी पड़ी और कार्रवाई भी करनी पड़ी।
एनकाउंटर जैसी या इस तरह की कोई बात इसमें इस घटनाक्रम में नहीं है, ये एक इंडिविजुअल घटनाक्रम है। किसी तरह का जो एलिगेशन कुछ लोगों ने लगाया था कि एनकाउंटर के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया, वो तथ्य इसमें नहीं नजर आता है। जो सब इंस्पेक्टर दोषी था, 4 उन्होंने पुलिसकर्मियों को नामित किया है इसमें, तो 4 को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, और जो सब इंस्पेक्टर जिसके ऊपर गोली मारने का आरोप है उसको हम लोगों ने उसकी पिस्टल कब्जे में ले लिया और उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने जेल भेज दिया है।
योगी सरकार ने पिछले 10 महीनों में एनकाउंटर का जो कीर्तिमान बनाया है उससे लोग आश्चर्य में हैं। आश्चर्य की वजह 10 महीने में होने वाले 1142 एनकाउंटर और उसमें मरने वाले 34 से ज्यादा कथित अपराधी नहीं, बल्कि इसकी जद में आए तमाम बेगुनाह लोग हैं। नोएडा की घटना से पहले भी कई मुठभेड़ों पर सवाल उठ चुके हैं। नोएडा में ही सुमित गुर्जर के एनकाउंटर को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था और लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। यही नहीं, 18 जनवरी को मथुरा में एनकाउंटर के दौरान एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई थी। करीब महीने भर पहले DGP पद पर बैठने वाले OP सिंह की ज्वाइनिंग भले ही लखनऊ और उसके आसपास हुई ताबड़तोड़ डकैतियों जैसी घटनाओं के बीच हुई, लेकिन पुलिस ने 10 दिनों के अंदर उन्हें करीब 2 दर्जन एनकाउंटरों की सलामी भी दी। ताबड़तोड़ होने वाली मुठभेड़ों पर न सिर्फ विधानसभा और संसद में हंगामा मचा है, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन राज्य के DGP OP सिंह इन्हें सही मानते हैं।
पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोगों ने अपराधियों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। हमारे जितने भी पुलिस के क्रैकडाउन हो रहे हैं उसमें बहुत सारे वांटेड क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों को आत्मरक्षार्थ हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया है, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। उसका हम जवाब देंगे NHRC को कि क्या है वस्तुस्थिति से हम उन्हें अवगत कराएंगे।
वहीं जानकारों का कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री की अपराधियों को बार बार की चेतावनी को देखते हुए भी किया जा रहा है, ताकि पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री की नजर में आ सके। लेकिन यूपी के पुलिस महानिदेशक रह चुके रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रकाश सिंह कहते हैं कि यूपी की परिस्थितियों के लिहाज से ऐसा जरूरी हो गया था।
मैं नहीं समझता कि मारे जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता का विषय है और इससे किसी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि सब पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो गई है और सबको मार दे रही है।
इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड पहले भी कुछ ऐसा ही रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 12 साल में फर्जी एनकाउंटर की जितनी शिकायतें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंची हैं, उनमें एक तिहाई से ज्यादा मामले यूपी पुलिस के ही खिलाफ थे। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब अखबारों की समीक्षा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश उप्रेती जी। दिनेश, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 14 मार्च तक टली। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई अखबारों ने इसे सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अयोध्या मुद्दे को जमीन विवाद के रूप में ले रहे हैं और अभी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। रफाल डील पर अरुण जेटली के कांग्रेस पर पलटवार को इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी NHPC में राज्यों को देने पड़ सकते हैं 4,330 करोड़ रुपए। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है। जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस स्कीम से देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। मालदीव की सरकार ने संकट सुलझाने के लिए चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रुख किया है। इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक मालदीव सरकार मित्र राष्ट्रों की सूची में भारत का नाम नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उत्तर प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों पर खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर के मुताबिक पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL के लिए 3500 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि BCCI को IPL से 12,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और खबर के मुताबिक गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ये जुर्माना लगाया गया है।
जी दिनेश उप्रेती, अखबारों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NRI से शादी करके परेशानी झेल रही और मदद मांगने वाली महिलाओं की तादाद देश में लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में ऐसी शिकायत करने वाली महिलाओं की तादाद दोगुनी हुई है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि हर 8 घंटे में कम एक महिला मदद के लिए मंत्रालय के NRI सेल में फ़ोन करती है। विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग इन परेशान महिलाओं की कैसे मदद कर रहा है और ऐसा करने में क्या कुछ दिक्कतें पेश आ रही हैं, सुनिए गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट।
पंजाब की रमन की शादी 4 दिसंबर 2016 को कनाडा में रहने वाले हरप्रीत से हुई थी। शादी के तकरीबन 2 महीने बाद ही हरप्रीत रमन को ससुराल में छोड़ कनाडा अपने काम पर लौट गए। जाते समय रमन से वादा किया कि वो जल्द ही उसे भी कनाडा बुला लेंगे, लेकिन पति का जल्द बुलावा कभी आया ही नहीं। कुछ दिनों बाद रमन को उनके ससुराल से भी निकाल दिया गया। रमन कहती हैं,
चले गया उसके बाद उसकी जो मेरी सास है वो मुझे तंग करना शुरू कर देती है। तूने यहाँ पे रह के क्या करना है, तो अपने मायके में जा। अगर तूने यहाँ पे रहना है तो अपने घर वालों को बोल सारा खर्चा उठाए। तो मैं उस समय 2.5 महीने प्रेग्नेंट भी थी मैं, और मैंने कहा कहते नहीं, हमारा ATM था, ज्वाइंट ATM था, तो कहते तोरे सारे गवर्नमेंट जॉब कर दे, तो 50,000 रुपए ATM में डलवाया कर। वो ATM मेरे पास नहीं, मेरे ससुराल वालों के पास है।
देश की कई लड़कियों की कहानी रमन जैसी ही है। दिल्ली महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2013 में जहां 361 महिलाओं ने शिकायत की थी, वहीं 2017 में उन्हें कुल 528 शिकायतें मिली हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2017 के बीच मंत्रालय के NRI सेल में पति से तंग आई महिलाओं के 3,328 शिकायतों भरे फोन कॉल आए हैं। इनमें महिलाओं की दो तरह की शिकायतें हैं। कई औरतों के पति शादी कर उन्हें भारत में ही छोड़कर चले गए, और कई ऐसी हैं जिन्हें साथ तो ले गए लेकिन वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। शिकायत करने वाली आधी से ज्यादा महिलाएं पंजाब से हैं। ऐसे मामलों में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं तेलंगाना और कर्नाटका। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा कहती हैं,
कर्नाटका उस साइड भी अब ये मतलब साउथ में भी बढ़ गए, कंट्रीज डिफर करती हैं, मतलब वो NRI हस्बैंड अगर पंजाब का होगा तो US कनाडा उस साइड में होंगे, और अगर साउथ का होगा तो मिडिल ईस्ट और उस साइड में ज्यादा हस्बैंड होंगे, तो लेकिन प्रॉब्लम सेम ही है, हस्बैंड छोड़ जाते हैं, अबेंडेंट वाइफ, और आजकल एक वो भी ट्रेंड चला हुआ है हॉलीडे वाइफ, लाइक वो आते हैं गेट मैरिड एंजॉय देयर हनीमून एंड लीव देयर वाइव्स एंड गो, तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है।
कानून के मुताबिक कोई भी महिला NRI शादियों से जुड़े मामलों की शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग से कर सकती हैं। आयोग शिकायत की एक कॉपी विदेश मंत्रालय और एक कॉपी पुलिस को भेजती है। इसके बाद NRI पति जिस देश में रहता है उस देश में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाता है। अगर महिला विदेश में है तो महिला उस देश में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकती है, जिसके बाद वहां का भारतीय दूतावास भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क कर महिला की मदद करता है। हालांकि विदेश मंत्रालय कुछ चुनिंदा स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए ऐसी महिलाओं की आर्थिक और कानूनी मदद भी करता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद हो जाता है। रेखा शर्मा कहती हैं कि इसके लिए अलग से सेल या टीम बनाने की जरूरत है। उनके मुताबिक महिला आयोग की कोशिश है कि आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर इस समस्याओं का समाधान करें, ना कि शिकायतें इधर उधर फॉरवर्ड करने में ही उलझे रहें। गुरप्रीत कौर, BBC दिल्ली।
और अब बात मध्य प्रदेश के बड़वानी की, जहाँ सिंधवा किले में रानी सती का मंदिर बना दिया गया है। कुछ लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। शुरे नियाजी की रिपोर्ट।
बड़वानी के सेंधवा किले में बने रानी सती के मंदिर के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मंदिर का निर्माण कई सालों से चल रहा था, इसके बावजूद प्रशासन ने इसे रोकने की कार्रवाई नहीं की। इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंधवा के सब डिविजनल ऑफिसर BS कलेश का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण में आपत्ति बहुत देर से की गई, वहीं यह पूरा मामला आस्था का है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
ठीक है, तो ये अभी इतने समय से बना रहा था कि पहले क्या किया इन्होंने, अभी इसको ज्यादा इसको बना रहे हैं और पूरे गांव के आस्था का जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी जो है जांच करवा रहे हैं, जो सभी होगा उसके नियमानुसार कर रहे हैं।
इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण से सती जैसी कुप्रथा का महिमा मंडन किया जा रहा है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संयोजक अजय मित्तल इस मंदिर को बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट पहले ही आदेश कर चुका है कि किला परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण न हो।
सिंधवा के सारे प्रशासकीय अधिकारियों के कार्यालय और निवास उसी किले की परिधि के अंदर बने हुए हैं और उनके आंखों के सामने 3 साल में इतना बड़ा मंदिर सरकारी जमीन पर बन के खड़ा हो गया, उसको रोकने का दायित्व किसका था।
वहीं इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सतीश शर्मा इसमें कुछ भी गलत नहीं मानते हैं।
बस ये है कि हमारे सती प्रथा पुरजोर विरोध करते हैं, ये हम लोग कुलदेवी है, हम उसी रूप में दुर्गा रूप में पूछते हैं, हमारे बड़े बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं कि हम सती प्रथा का बहुत विरोध करते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं।
वहीं इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री अंतर सिंह दरबार अपनी मौजूदगी का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी अन्य कार्यक्रम में आए थे और कुछ लोगों से मिलने के लिए रुक गए थे। उन्होंने कहा कि वो सती के विरोधी हैं। शुरहनियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
झारखंड के संथाल परगना में इन दिनों काला नमक प्रजाति के धान की खेती की जा रही है। ये शुगर फ्री चावल की एक किस्म है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण ये चावल कुपोषण से लड़ने में सहायक है और मधुमेह के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। सुनिए देवघर से रवि प्रकाश की एक खास रिपोर्ट।
वैसे तो इसका नाम काला नमक है, लेकिन यह नमक न होकर धान की एक किस्म है। यह धान की वैसी प्रजाति है जिसका चावल शुगर फ्री होता है, मतलब मधुमेह के रोगी इसे बेधड़क खा सकते हैं, लिहाजा इसकी कीमत अधिक है। केंद्र सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया है। इसके बाद संथाल परगना के देवघर और पाकुड़ जिलों में इस शुगर फ्री धान की खेती की जा रही है। इसके लिए गैर सरकारी संस्था नेट्स ने किसानों को प्रशिक्षित किया है। इसके कार्यकारी निदेशक मुरारी चौधरी ने BBC को बताया कि इस चावल के जरिए झारखंड कुपोषण से मुक्त तो बनेगा ही, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुरारी चौधरी ने कहा,
एक्चुअली हम लोगों ने बहुत मुश्किल से कुछ सीड्स उपलब्ध कराया था, लगभग 300 kg, तो हम लोगों ने 1200 किसान के साथ सीड प्रोडक्शन पर काम किए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर से इसका एक्चुअली हाई लेवल प्रोडक्शन में जाएंगे।
देवघर जिले के पालोजोरी और पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा इलाके में कई किसान इसकी खेती कर रहे हैं। इनमें से एक महेश दास भी है। इन्होंने बताया कि इसका पौधा धान की दूसरी किस्मों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। इसका धान दिखने में हल्के काले रंग का होता है। इसकी कुटाई के वक्त खास सतर्कता बरती जाती है क्योंकि साधारण मिल में कुटाई करने से इसके छिलके उतर जाते हैं और चावल सफ़ेद निकलने लगता है, जबकि रबर प्रिंट वाली मशीन में चावल का रंग काला ही बना रहता है। इसका स्वाद हल्का नमकीन होता है। महेश दास ने बताया,
पहले हम लोग बीज जो है उसका अच्छा से पहले साफ कर लेते हैं घर में, शोधित करने के बाद शोधित जो हम लोग करते हैं वो भी हम लोग नेचुरल तरीके से करते हैं। बीजामृत जैसे हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग गाय का पेशाब, बेसन, गुड़, हल्दी और गोबर इन सबको तैयार करके हम लोग उसको उसके साथ जो है शोधित कर लेते हैं।
चावल की खेती पर लगातार रिसर्च करने वाले बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने बताया कि काला नमक प्रजाति के चावल में आयरन और जिंक की मात्रा अधिक होती है। इस कारण गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए इसे लाभदायक माना गया है।
ट्रेडिशनल वैरायटीज है जैसे करहनी है या साठी है या दोरा है, इस तरह की वैरायटी है ना, तो जो वैरायटी है ना उसको आप
दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर समेत कुछ अन्य इलाकों में कभी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। कहते हैं कि बुद्ध काल का चावल है और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी चावल से बना भोजन कर अपना उपवास तोड़ा था। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज इसकी खुशबू और स्वाद के दीवाने थे, लेकिन कालांतर में किसान इसकी खेती से अलग हटते चले गए। इस कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों काला नमक चावल की खेती को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल करने की घोषणा की। अब सरकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर में इसकी खेती को प्रमोट करने में लगे हैं। इधर झारखंड के किसान भी इसकी खेती को लेकर उत्साहित हैं और इस साल इसकी फसल और अच्छी होने की उम्मीद है। रवि प्रकाश, BBC के लिए देवघर में।
आज से दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं। सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। इस साल के विंटर ओलंपिक आज यानी कि 9 तारीख से लेकर के 25 फरवरी तक दक्षिण कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में चलेंगे। इस दौरान 15 खेल श्रेणियों के 102 इवेंट्स होंगे, जिसमें कि स्कीइंग, स्केटिंग, स्की जंपिंग, आइस हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। इन खेलों में भारत सहित 90 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से दावेदारी पेश करेंगे ल्यूज एथलीट शिवा केशवन और क्रॉस कंट्री स्क्वायर जगदीश सिंह। 36 साल के केशवन छठी बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं और ये ओलंपिक खेल 2018 का उनके करियर का आखिरी ओलंपिक खेल होने वाला है। तो दूसरी तरफ जगदीश के लिए 9 से 25 फरवरी तक चलने वाले प्योंगयांग ओलंपिक उनकी करियर का पहला ओलंपिक होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों कोरियाई देशों के खिलाड़ी एक ध्वज के नीचे शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। भारत की क्रिकेट टीम इन दिनों दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे है, जहां 6 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारत ने 3-0 की बढ़त ले ली है और अब अगला मैच 10 फरवरी को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। और अब बात करते हैं टेनिस की। भारत की अंकिता रैना ने यूलिया को कड़े मुकाबले में मात देते हुए कजाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे फेडरेशन कप टेनिस टूर्नामेंट के पूल ए के मुकाबले में भारत की वापसी कराते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया है। इससे पहले करमन थांडी अपना मुकाबला हार गई थी और भारत 0-1 से पीछे हो गया था। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। मोदी फलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। अमेरिकी सांसद सैकड़ों अरब डॉलर के बजट बिल को पारित कराने के लिए वोटिंग की तैयारी में हैं। बजट प्रस्ताव पर पहले सीनेट में वोटिंग होगी और इसके बाद प्रतिनिधि सभा में इसे पास कराना होगा। अमेरिकी शेयर बाजारों में एक बार फिर तेज गिरावट आई और डाउ जोन्स हफ्ते में दूसरी बार 1000 अंकों से अधिक टूट गया। सीरिया ने अमेरिकी गठबंधन सेना पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। सीरिया के पूर्वी हिस्से में गठबंधन सेना के हवाई हमलों में 100 से अधिक सरकार समर्थित लड़ाकों के मारे जाने की खबरों के बाद सीरिया ने यह आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 कथित ब्रितानी सदस्यों को सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों ने पकड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के अधिकारी चोहुई को शीतकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति दे दी है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।